नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कान आगरा सत्संग मंदिर में रविवार के सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर रविवार को श्री प्रभुपाद ने भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास जगाने के लिए बढ़ाने के लिए भरने के लिए ये रविवार का कार्यक्रम आरंभ किया। संसार में सब चीजों के ऊपर हमारा श्रद्धा है विश्वास है, बस भगवान और भगवान के शास्त्रों के ऊपर नहीं है, ये हमारी समस्या है। बगैर विश्वास के तो कोई संसार में चल भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। श्रद्धा है, विवाह होता है लड़की का और पंडित जी हाथ देता है लड़के के हाथ में, लड़की समझती है अभी मेरा जीवन सारा पालन करेगा, मेरे बच्चों का पालन करेगा, विश्वास होता है और क्या। इतना सारा दुकान का लोग लाखों का माल भर के बैठे हैं, इस विश्वास में कोई आएगा खरीदेगा हमारा घर चलेगा, ये सब विश्वास है कि नहीं। टिकट लेके गाड़ी में सो जाते हैं कि ड्राइवर है कि नहीं है, कभी किसी ने पूछा नहीं। वो है तो कोई उसको गाड़ी चलाना आती है कि नहीं आना चाहती है, ये भी किसी ने नहीं पूछा, जाके अपनी सीट पे सो जाता है और ये विश्वास है कि हम जहाँ जा रहे हैं वह पहुंच जाएंगे। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे को याद करो आपको मैं पाप से बचाऊंगा, पता नहीं क्या करेगा भगवान। सबके ऊपर विश्वास है लेकिन भगवान के ऊपर नहीं। और प्रेम भी संसार में सबसे करके देख लिया लेकिन सब समय आने के ऊपर मुंह मोड़ लेते हैं। तो भगवान कहता मुझसे प्रेम करो, हम कहते पता नहीं आप क्या करोगे पता नहीं। तो प्रेम और विश्वास सबके ऊपर संसार में करके देखा और अनादिकाल से करते आ रहे हैं लेकिन आज तक किसी को सफलता मिली नहीं है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद ने देखा कि लोगों के अंदर विश्वास तो है क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ये जो जीव है ये श्रद्धा से भरपूर है, और प्रेम भी इसके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधे कबू नाही। सबके हृदय में प्रेम भी पड़ा है, सबके हृदय में विश्वास भी पड़ा है, लेकिन जिसके लिए है वहां जा नहीं रहा, वो एड्रेस गलत डाली हुई है, वो घूम घूम के वापस आ रहा है। अरे जाना चाहिए जिसके लिए, जिसने डाला है उसके पास जाना चाहिए ना भाई। विश्वास डाला किसने भगवान ने, प्रेम डाला किसने भगवान ने, तो उसके पास जाना चाहिए ना। वो एड्रेस हमको पता नहीं है, वो घूम घूम के वापस आ रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर आ रहा है, कभी देवता की जूनी में जा रहा है, कभी मानव बन रहा है, कभी गधा बन रहा है, कभी कुत्ता बन रहा है, कभी इंसान बन रहा है। अरे जहां जाना चाहिए वहां तो जा नहीं रहा है, ये है समस्या सारी। तो आज हम ये रविवार को शुरू करते हैं और आने वाले 3-4 रविवार को इसी को चलाइए। 15वां अध्याय भगवद गीता का बहुत छोटा भी है, बहुत मधुर भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। क्या अध्याय का नाम है? पुरुषोत्तम योग। पुरुष का मतलब है जो भोगता है, जो स्वामी है, और उत्तम का मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है। तो कौन है पुरुषोत्तम? जैसे हमारे सामान्य भारत में भगवान श्री रामचंद्र को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम की परिभाषा हमारे भारत पद्धति में है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम है। तो योग का मतलब उनसे संबंध कैसे स्थापित करें, क्योंकि जो प्रेम और विश्वास हमारे हृदय में है, हर जीव के हृदय में है, ये जीव आत्मा का स्वभाव है, ये शरीर का स्वभाव नहीं है, ये जीव आत्मा का स्वभाव है और सबके साथ ये है। ये वापस भगवान के साथ कैसे जोड़ा जाए, योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो ये हमारे हृदय में जो प्रेम और विश्वास है, ये भगवान से कैसे जोड़ा जाए। अब इस अध्याय को शुरू करते हुए जोड़ा जाए तो उसके लिए कहीं से तो तोड़ा जाएगा तब जोड़ा जाएगा ना। कहीं तो अब अटका हुआ है, वहां से जब टूटेगा तब जुड़ेगा, ये नेम ये है। एक उदाहरण देते हैं, नदी के किनारे, आप भी आगरा में जमुना नदी के किनारे पे रह रहे हैं, भाग्यशाली हो। जमुना नदी का नाम लेने से भी आदमी पवित्र होता है। वो दूसरी बात है कि यहाँ के लोग लेते नहीं है नाम। जमुना नदी का दर्शन हो जाए, नाम लिया जाए, तो आदमी पवित्र हो जाएगा। भगवान कृष्ण और जमुना में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जमुना भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। जमुना जमुना करते रहेंगे तो भी भगवान मिल जाएगा, लेकिन इतनी सारी आपका भाग है, जमुना आपके यहां से बह रही है, लेकिन देखने जाने वाले साल में एक बार भी नहीं जाते होंगे। स्नान करने वाले तो मेरे ख्याल में उसको तो कोई कई वर्ष बीत गए होंगे, और पानी का तो ये हाल है कि आचमन करना तो अभी कतने कौन से जन्म में किया होगा। इतना बड़ा अमृत बहरा है, लेकिन इसको कहते हैं जल में मछली प्यासी, इसको कहते हैं जल में मछली प्यासी। पानी में रहती है लेकिन प्यासी है। अब गंगा जमुना के किनारे के ऊपर रहने वाले भी अगर भगवान के प्रेम और विश्वास से खाली हो तो कैसे काम चलेगा। नदी के किनारे एक रहने वाला परिवार, विवाह था, दूसरे तरफ जाना था, दूसरे नदी के दूसरे पार विवाह था। तो शाम को सब बाराती नाव में बैठ गए, जाना था सामने, विवाह था, संबंध स्थापित करना था, संबंधी वहां रहते थे। सब बैठ गए नाव में और शादी के गीत भी गाना शुरू कर लिए, और नाव वाले ने चप्पू चलाना भी शुरू कर दिए। एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, बोले तो जल्दी पहुंचना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, 5 घंटे हो गए। अरे भाई क्या हो गया, भूल गए, रास्ता भटक गए, अंधेरी रात है। तब सुबह का 5-1 होने लगा, थोड़ा प्रकाश हुआ, तो पूछते अरे भाई कहाँ हम पहुंचे हैं, सारी रात चल चल के थक गए हैं, अभी तक हमको पहुंचना है हमारे संबंधी के वहां, तो कौन से गांव जाना है। भाई बोला हो भाई मानो गोकुल जाना था, भाई मथुरा के दूसरे तरफ गोकुल है ना। बोला गोकुल कहाँ, आप तो मथुरा में ही खड़े हो। अरे बोले सारी रात तो हमने नाव चलाई है। बोला चलाई तो है, ये जो नाव बंधी हुई थी रस्सी में खूंटे से खोली नहीं है, वो खूंटे में बंधी हुई नाव है तो दूसरे पास तरफ जाएगी कैसे, पहले तो खूंटे से खोलोगे तब चलाओगे तब दूसरे तरफ जाएगी ना। तो हमको भगवान से जुड़ना है, पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ना है, लेकिन जहां हम बंधे भई है वहां से खुले ही नहीं है, तो जहां से तोड़ा नहीं तो जोड़ेंगे कैसे। तो पहला ही श्लोक पहले 6 श्लोकों में 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है एक उल्टे वृक्ष पेड़ जैसा इसका स्वरूप है, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है, और इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, बड़ी बलवान हैं, और हर वृक्ष को पानी देते हैं तब बढ़ता है ना। ये वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों के पानी से बढ़ता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से। और इस वृक्ष का फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष संसार के अंदर। इस वृक्ष को जब तक हम दृढ़ संकल्प के साथ असंग ज्ञान के शस्त्र से काटेंगे नहीं, तब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं। तो ये पहला श्लोक पढ़ते हैं। वैसे संडे में आपके गीताएं सबके पास है, अब गीता मैराथन, गीता का जयंती का महीना भी आ रहा है, सबके हाथ में गीता होनी चाहिए जब कथा हो, और साथ में रख के खोल के पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे श्री प्रभुपाद ने असल में सत्संग को कक्षा कहा, जैसे बच्चों की कक्षा लगती है, सुबह जाते हैं तो अपने किताब साथ ले जाते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बगैर बस्ते के स्कूल नहीं भेजता, भाई पढ़ेगा कैसे अगर अपना कोई शास्त्र साथ नहीं होगा। तो ऐसे हम बड़े उम्र में भले हो गए हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं समझता हूँ पूरे भारत में 1% भी ऐसे नहीं है को ज्ञात गीता को कभी बैठ के समझने के लिए पढ़ा हो। ये इसलिए भले हम यहाँ प्रभुपाद ने इसको कक्षा करके रखा था कि आइए पढ़िए, ये हमारा विश्वविद्यालय है, आत्मा के विज्ञान को सिखाने का, भगवत प्रेम सिखाने का ये विश्वविद्यालय है हमारा। तो यहाँ आप अपने आत्म उद्धार के लिए आइए, भगवत विश्वास और प्रेम बढ़ाने के लिए आइए, यही हमारा इस कृष्ण भावना का उद्देश्य है। तो 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग गीता ले लीजिए और हमारे साथ पढ़िए, और इसका अर्थ जब तक, पहले तो आप भारतवासी है, इसके 80% शब्दों का अर्थ आपको आता है, हम अभी आपको बताएंगे आपको आता है, और दूसरा अर्थ नहीं भी आता है तो इसके उच्चारण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि ये सब शब्द जो है मंत्र है, ये गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि ही अनुष्टुप छंद परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण आराध्य देव। तो ये तो ऐसा है कि ये मंत्र है जो हृदय को पवित्र शुद्ध कर देगा। तो 15वां अध्याय निकालिए, पहला श्लोक हमारे साथ पढ़िए, सब पुस्तक को खोलिए। श्री भगवान वाचा ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुर् अव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तं वेद स वेद्धवे। एक बार फिर पढ़िए, अभी नहीं खुला है तो दोबारा खोलिए। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्नांसि यस्य प्रणानि सतम् वेद स वेदविता। ये पहले तो लिखा है श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान श्री कृष्ण के शब्द है, तो भगवान के शब्द है। गीता का नाम ही है भगवत वाणी। भगवत वाणी ये गंगा जो निकली है भगवान के चरणों से निकली है, वो तो संसार पूरे को पवित्र करती है। ये गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो जैसे गीता गंगा पवित्र करती है स्नान करने से, ये गीता इसके पाठ करने से पवित्र होते हैं। ये भगवत वाणी है, ये गीता अमृत है। गीता अमृतम इदम यथो, ये गीता अमृतम, ये पठे प्रियत भगवान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जित। गीता अमृत का जो पान करेगा, ये पीने का है। जैसे भागवत को कहा, क्या कहा है, भागवत रसमालयम, रस है, रस है। तो गीता को भी अमृत का है, ये पीने की चीज है, कानों के प्यालों से इसको पीना है। गीता अमृतम यथोक्तम परिउपासते शरदाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिय। ये गीता का, ये धर्म का अमृत है। इस गीता को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मामृतम, ये धर्म का अमृत है। ये स्वर्ग का अमृत नहीं है जो पुण्य क्षीण होने के पास वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, स्वर्ग में सदा नहीं रह सकते, लेकिन ये तो धर्म का अमृत है। ये गीता धर्म का अमृत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता अमृतम। ये पठे प्रियत पुमान, जो बुद्धिमान इसका पाठ करता है श्रवण करता है, विष्णु पदम वापनोति, भगवान श्री विष्णु नारायण गोविंद के चरणों को प्राप्त करते हैं। भय शोक, भय का मतलब होता है भविष्य, भय होता है भविष्य का आगे क्या होगा, और शोक होता है भूतकाल का, ये हो गया, कोई मर जाता है तो कहते शोक, तो शोक होता है भूतकाल का, और भय होता है भविष्य का, और मोह होता है वर्तमान का, अभी मोह है, ये मेरे पास है, ये मेरा है, ये तीनों से मुक्त हो जाता है। भय शोक आदि वर्जित, आदि का मतलब मोह, तीनों से मुक्त हो जाता है। ये गीता अमृत इतना बलवान शक्तिशाली शास्त्र है और भगवान के मुख से निकला है। गीता सुगीता किमने शास्त्र विस्तरी, ये गीता एक ही अपने आप में परिपूर्ण है, और अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या है। जो विश्व के सारे शास्त्रों में है वो तो गीता में है ही, लेकिन जो अन्य स्थानों में कहीं नहीं मिलेगा वो भी गीता में मिलेगा। गीता में तो भगवान मिलते हैं, ये भगवान की वाणी है साक्षात। तो भगवान की वाणी में भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल अधशाख। अभी आप चार शब्दों में से, आप सब भारतीय हैं, आपको मूल का अर्थ तो आता है जड़, भाई मूल कहते जड़, मूली हमारी जड़, उपांत निकालते मूली जड़ हो गई। हाँ, ऊर्ध्व मूल अधशाखा का अर्थ भी सबको आता है, शाखा कहां लगती है, ये पेड़ की शाखा है, ये दो शब्द आते हैं ना, और ऊर्ध्व और अध। ऊर्ध्व कहते ऊपर को, अध कहते नीचे को, अरे अधोगति जाएगी मतलब नीचे जाएगा, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर। तो ये जो संसार है ऐसा एक वृक्ष है जिसकी जड़ है ऊपर और डालियां हैं नीचे, शाखा है नीचे, तो ऊपर जड़ कौन सी है भाई, किसको, कहां से संसार किसने पैदा किया, ब्रह्मा जी ने, भाई ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, तो जड़ तो हुई ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का लोक तो ऊपर है सत्य लोक, तो जड़ हो गई उधर, और शाखाएं हैं नीचे, कुछ शाखाएं ऊपर है कुछ नीचे है कुछ और नीचे है। तो शाखाएं दूसरे श्लोक में इसके बाद आएगा, जो ऊपर शाखाएं हैं जड़ नहीं, ऊपर जो शाखाएं हैं वो देवलोक है, इंद्र का लोक है, स्वर्ग आदि लोक है। जो नीचे धरती की ये शाखाएं, इसमें मानव पशु पक्षी हैं, और इससे भी नीचे पाताल में जाने वाली शाखाएं हैं वो तो नीच जूनियां हैं। लेकिन ये तो सीधा सा इस धरती के ऊपर पशु जो है, पशु पक्षी मानव ये सब जो है, ये नीचे की शाखाएं हैं, और देवता देवता गंधर्व किन्नर सिद्ध ये सब ऊपर के लोक है, जनलोक तपलोक मर ये ऊपर की शाखाएं हैं। तो ये पेड़ उल्टा है, ठीक है। ऊर्ध्व मूल अधशाख अश्वत्थ, इसका नाम है, इस पेड़ का नाम है अश्वत्थ। अश्वत्थ वैसे कहते हैं पीपल के पेड़ को, कभी कभी उसको बड़ का भी कहते हैं, बड़ या पीपल। तो एक तो वट वृक्ष, जैसे वट वृक्ष है ना, वट वृक्ष पीपल दोनों, क्योंकि भगवान दसवें अध्याय में कहते हैं वृक्षाणाम अश्वत्थस्मि, सारे वृक्ष वृक्षों में मैं अस, हाँ वहां भी शब्द अश्वत्थ है। तो भगवान विष्णु का वास पीपल में है, तो पीपल को विष्णु का प्रतीक मानते हैं। तो भगवान की विभूति में भी पीपल है असल में, लेकिन बनियान ट्री अंग्रेजी में लिखा है श्री प्रभुपाद जी ने, तो इसको बड़ वट वृक्ष भी कह सकते हैं और पीपल भी कह सकते हैं। अश्वत्थ का असल में दूसरा अर्थ क्या है, अशव स्थ, जो आगे नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। यह संसार कैसा है, आज है कल नहीं रहेगा, आज जो दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा। वैसे संसार का अर्थ होता है जो सरकता जाए, एक जगह नहीं खड़ा हो, जैसे सड़क, जो सड़क शब्द है ना, सड़क में खड़ा नहीं हुआ जाता, चलना पड़ता है। जैसे आपके यहां बह रही है जमुना जी, हरिद्वार में गंगा बह रही है, आप गंगा के उसी पानी में दो बार नहीं नहा सकते, आपने नहाया ऊपर उठे तब तक वो पानी तो बह गया, आप दोबारा जब डुबकी लगाएंगे तो दूसरा पानी आएगा। तो ये संसार ऐसा है जहां आप आज खड़े कल नहीं रहेंगे। आप अपने जीवन में देखें, कभी किसी का जन्म कहां हुआ, पहुंचे कहां हैं, आगे कहां जाएंगे कुछ मालूम नहीं। तो और फिर ये संसार आज नहीं तो कल, एक बार भाई संसार में जो आए थे वो चले भी गए ना, ये दुनिया में सभी तो चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये संसार अश्वत्थ वृक्ष, इसका मतलब है ये, क्योंकि है तो निकलता तो भगवान से ऊपर से, तो इसलिए झूठा नहीं है, है सत्य, लेकिन है अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पररी, हिंदी में क्या कहेंगे, अस्थाई है। और अस्थाई कैसे, इसको ऐसे माने जैसे सूर्य है, सुबह उगता है रात को चला जाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि सूर्य होता नहीं है, सूर्य है लेकिन अब रात को नहीं दिखेगा। ऐसे संसार जब ब्रह्मा सोती है तब नहीं दिखता है, ब्रह्मा जाग जाता है तो दिखता है, हम भी रात को सो जाते हैं तो किसी को नहीं दिखते हैं, दिन में उठते हैं तो सब दिख जाते हैं। तो ऐसे ये संसार भी, जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो संसार होता है, ब्रह्मा जी सो जाते हैं हम सब सो जाते हैं ब्रह्मा के साथ। तो ये संसार अस्थाई है लेकिन है सत्य, झूठा नहीं है। झूठा इसलिए नहीं है कि भगवान से अगर निकलता है झूठा कैसे होगा, तो फिर भगवान भी झूठे हो जाएंगे। तो संसार मिथ्या नहीं है, लेकिन भगवत गीता में इसके लिए शब्द क्या है, अशाश्वत, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है लेकिन है सत्य, झूठ नहीं है। तो ऊर्ध्व मूल अधशाख का अर्थ आ गया अश्वत्थ का, एक अश्व का दूसरा अर्थ क्या है, अश्व घोड़े को भी कहते हैं संस्कृत में, और जो बहुत बहुत अच्छे वंश का घोड़ा होता है ना, वो एक पांव ऐसे ऊपर करके खड़ा होता है, तीन पांव के खड़ा होता है, एक पांव ऊपर होता है, उसका अर्थ ये है कि ये संसार तो एक चौथाई भौतिक जगत है, तीन चौथाई तो आध्यात्मिक जगत है, जो तो नित्य है शाश्वत है, ये अशाश्वत है, एक टांग ऊपर पड़ी ऐसा है, घोड़े की ऊपर वाली टांग जैसा है, वो तो कहीं टिकने वाला नहीं, जब चलता है तब नीचे रखेगा, नहीं चलता है तब ऊपर ही खड़ी रहेगी, तो ये कभी नीचे उतरता है और कभी ऊपर रहता है, इसका अर्थ ये। तो अश्व, अश्व का एक अर्थ घोड़ा भी है अश्वत्थ। प्राहु का अर्थ है कहा गया है। किसने कहा है? बोला शास्त्र ने। किसने कहा है? बोला ऋषियों ने। ये किसने बोला है? भगवान कहते शास्त्र और ऋषि ये कहते हैं। तो ऐसा वर्णन वेदों में है, शास्त्र में है। तो भगवान ये क्या कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो शास्त्र में भी है और वो सब ऋषि भी कहते हैं। तो ये भगवान अर्जुन के गुरु के स्थान के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं। इसलिए संसार में गुरुजी जो कहे वो शास्त्र में होना चाहिए और जो संत साधु और गुरु है उसका अनुमोदन करें। अगर ये तीन चेक बैलेंस नहीं होंगे आध्यात्मिक रास्ते में एक दूसरे का चेक बैलेंस को क्या कहेंगे हिंदी में? चेक बैलेंस, मतलब एक दूसरे के समर्थन की आवश्यकता है। दूसरे का समर्थन नहीं करे तो वो सत्य नहीं है। तो एक दूसरे के समर्थन, जो गुरुजी कहे वो शास्त्र में होना चाहिए और वो साधु साधु समाज में मान्यता होनी चाहिए उसकी। तो ये तीन चीजों का एक दूसरे के लिए सहयोग रखा है कि एक नहीं, जैसे कोई कहते हैं तीन ओपिनियन ले लो, तीन राय ले लो, तो ये तीन राय होती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बगैर शास्त्र के आधार के कोई शिक्षा कभी स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। जिसका शास्त्र का प्रमाण नहीं है उस चिस्ता का, उस वो शिक्षा किस काम की? और बहुत से ऐसे कलयुग के अंदर आपको साधु संत के नाम में लोग मिलेंगे, शास्त्र कोई नहीं, अपना शास्त्र बना लिए। भाई जो आधार शास्त्र का तो होना चाहिए ना, तो शास्त्र का आधार तक नहीं है कहीं। तो यहां भगवान पहले ही कहते हैं ये सब शास्त्रों में लिखा है और ये ऋषियों ने कहा है जो मैं कह रहा हूं। भगवान होते हुए भी शास्त्र का सम्मान करते हैं। भगवान राम जी अपने पिताजी के दशरथ जी का भरत के मुख से जब सुना निधन तो दुखी होकर मंदाकिनी के तट पे पिंड दान करने के लिए गए। तो वनवास में थे, आटा तो था नहीं, तो इंगूदी के पेड़ का गुदा लिया और उसको अर्पण करने लगे। पंडित जी को बुलाया तो महाराज का हाथ दशरथ का बाहर निकला पिंड लेने के लिए। पंडित जी ने कहा हे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, आपके पिताजी का हाथ निकला है, सबके पिता का हाथ नहीं निकलेगा। शास्त्र कहता है कि पिंड दान कुछ घास के ऊपर रखना चाहिए। तो रामचंद्र ने पिताजी के हाथ को प्रणाम करके और जो पिंड दान था वो कुछ घास के ऊपर रखा, क्योंकि ये शास्त्र का नियम है। तो पिंड तो आटे का बनता है, पिंड का मतलब है शरीर। जो आत्मा यहां से चला गया उसका शरीर तो हमने अग्नि संस्कार किया, तो उस जीव को दूसरा शरीर हम वहां देते हैं पिंड के रूप में। ये जो पिंड दान है ये असल में शरीर छोड़ के जाने वाले जीव को दूसरा शरीर हम यहां देते हैं, वो जहां भी होगा उसको वो शरीर मिलेगा। तो ये शरीर, इस पिंड का मतलब होता है शरीर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण शास्त्र की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का माखन चोर नाम बहुत प्रसिद्ध है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज में माखन का बहुत बड़ा चोर है, लेकिन सिर्फ ब्रज में है, आगरे में कभी किसी के घर माखन चुराने नहीं आया। ऐसा नहीं, आप लोग कहोगे तो बड़ी गुस्सा हो जाएगा, बोला तेरे घर कब आया? ये तो गोपियां प्रेम से बुलाती थी तो जाते थे, ये तो उनके प्रेम के कारण जाते थे। माखन क्या उनके हृदय को, उनके मन को मंथन करते थे। उनका नाम तो मुरली मनोहर है, वो मन को हरते थे और सारे अनंत जन्मों के भक्तों के पाप हर लेते हैं, मन हर लेते हैं। तो गोपियों ने कई बार जब यशोदा को शिकायत लगाई तो ये यशोदा कहा ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इतनी सारी चोरी करता है तो पकड़ के लाओ, मेरे घर में माखन की कमी है कि आपके घर में आएगा? तो गोपियों ने षड्यंत्र बनाया, अपने घर के चारों ओर से रस्सियों में घंटियां बांध दी, गेट के ऊपर बांध दी, उखल में बांध दी, छीके में बांध दी, खिड़की में बांध दी कृष्ण, और फिर बुलाने गई पनघट पे, हे गोपाल अपने साथियों के संग में आओ, ग्वाल बालों के संग में, हमारी सास ने बड़ा अच्छा मक्खन आज ताजा निकाला है। और कृष्ण कहते चलो स्तोक कृष्ण, चलो मधुमंगल, चलो अर्जुन सखा, चलो। अब सब उधर आते हैं तो देखते हैं घंटियां बांधी हुई है भगवान। वो सखा कहते हैं देखो तो गोपियां, घंटी बजेगी अंदर जाएंगी, आवाज आएगा, गोपियां आएंगी पकड़ेंगी, बड़ी होशियार हो गई हैं गोपियां। हे कन्हैया आप क्या करें? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप रुको। भगवान ने कहा हे घंटों के देवता प्रकट हो जाओ। तो घंटों का देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला भगवान क्या आ गया है? बोला ये आपकी घंटियों को बोलो कोई नहीं बजे, हम सब अंदर जाएंगे। अभी घंटियों का देवता ने घंटियों को बंद कर दिया, घंटी बजी नहीं, अंदर कूद के चले गए, उखल उठा दिया, वो छीके से मक्खन निकाला, ग्वालों को दिया, बंदरों को दिया। तो ग्वाल ऐसे कर मुंह बिगाड़ के थोड़ा खा रहे हैं, कर रहे हैं, बंदर फेंक रहे हैं मक्खन। तो कृष्ण को थोड़ा संदेह हो गया कि ये गोपी ने कहा ताजा है, ये कल का मक्खन खट्टा है, ये खा नहीं रहे, मैं चख के देखता हूं। वो उंगली मुंह में डाली चखने के लिए, सारी घंटी जोर से बजी। अरे भगवान ने कहा एक घंटों के स्वामी तुमको कहा तो घंटी नहीं बजे। बोला महाराज आपने शास्त्र में लिखा है भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे। अब आपको भोग लग रहा है, अब हम शास्त्र की बात माने कि आपकी माने? तो भगवान ने कभी शास्त्र की माननी पड़ेगी, हमारी तो शास्त्र को प्रमाण है। अब जो हम कह रहे हैं वो तो अभी के लिए कह रहे हैं, हो सकता है कल दूसरी बात कह दे, लेकिन शास्त्र जो है वो एक बात है, लेकिन भगवान दूसरी बात कहते नहीं है। इसलिए रामचंद्र के लिए लिखा है राम दो बार बोलते ही नहीं है, एक बार बोल दिया वही सत्य है, लेकिन उसका गलत अर्थ निकालते हैं। एक एक पठान आया करता था वो किशमिश बेचने के लिए पुराने जमाने में। एक साल आया, बोल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहा 35 साल। 10 साल के फार फिर किशमिश लाया, बोला उम्र कितनी है? बोला 35 साल। बोला 10 साल पहले भी 35, अभी 35? बोला हम एक बात करते, एक बार कह दिया वो कह दिया, हम दो बातें करते ही नहीं। वो हम तो उधर से आगे बढ़ने वाले ही नहीं, इतना बोल दिया इतना ही है। ये बड़ा बहुत बड़ा समस्या है, और विशेष रूप से ये देवियों को उम्र पूछ लो तो कभी जहां है वहां से हिलती भी नहीं है। तो बहुत बुढ़िया नीचे गाड़ी के डब्बे में नीचे वाली सीट में थी, एक के दांत नहीं थे, एक सुनती नहीं थी, मशीन कान में लगी हुई थी, और ऊपर जो है वो कोई 25 साल का लड़का ऊपर वाली सीट पे सोया हुआ था। एक दूसरे से पूछती है बहन तुम्हारी कितनी उम्र होगी? तो बगैर दांत वाली कहती है क्या कहूं बहन 45 से ऊपर तो नहीं है। तो दूसरी पूछती है आपकी बहन कितनी है? वो कान ठीक करके कहती है आपकी 45 है तो हमारी 43। तो ऊपर से लड़का गिरा वहां वहां वहां, तो क्या कर रहा है? बोला फिर मैं 5 साल का तो हूं ही नहीं, मैं पैदा ही अभी हुआ, तुम सब 20-20 साल खा गई। हमारा जन्म ही अभी हुआ है, और क्या, वहां वहां रोने लगा। तो ये भगवान का वचन सत्य होता है, भगवान दो बार कुछ बोलते नहीं है। इसलिए भगवत गीता का एक श्लोक है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये मेरा मत जो है ये नित्य है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं ईसाइयों में कहते हैं वो पुराना बाइबल टेस्टमेंट था, अभी न्यू टेस्टमेंट आ गया तो उसमें अमेंडमेंट हो गई, परिवर्तन आया, संशोधन हुआ। लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरी मत में कभी संशोधन होने वाला नहीं है। बोला किसके लिए है? मानवाह, ये मानव जाति के लिए है, ये मेरा जो गीता का संदेश है ये मानव जाति के लिए है, जो अपने आप को मानव मानता है उसके लिए है, सर्वकालीन है, सर्वभौमिक है, सर्वजानिक है, ये सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है, सब समय के लिए है और सब जगह के लिए है, सार्वभौम, सर्वकालीन, सर्व जानिक है। और भगवान गीता का पहला कौन भगवान का शिष्य है? हाँ, चौथे अध्याय में भगवान अपने पहले शिष्य का नाम बताते हैं, इमम विवस्वते योगम विवस्वान, विवस्वान का मतलब सूर्य देव, अब सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता का पहला शिष्य है। अब आपसे ये पूछें कि कितने सूर्य दुनिया में प्रकाश देते हैं, क्या अमेरिका का सूर्य अलग है कि रशिया का अलग है कि चाइना का अलग है कि भारत का अलग है, एक ही है कि नहीं। तो भगवान ये कह के क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, ऐसे ये मेरी भगवद गीता की शिक्षा विश्व व्यापक है और सारे विश्व के कल्याण के लिए है। तो भगवद गीता का सार्वजनिक जो लक्ष्य है, इसको श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार्थ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने समझा और उसको विश्व में स्थापित किया। आज पूरे विश्व के सब भाषाओं में, यहां तक के चाइनी भाषा और अरबी भाषा में और रशिया की भाषा में ये गीता उपलब्ध है और सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को, उसके भाव को उनके भक्तों ने कैसे समझा और कैसे पूरे विश्व में इसको प्रकाशित किया, वो आपके सामने अभी पड़ा है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे को पता लगाने की जरूरत है। अब दुनिया पूरी के लोग, 108 देशों के लोग अपने अपने देश का वो ध्वजा उठाकर, झंडा, फ्लैग लेकर यहां मथुरा में रथ यात्रा निकाली थी 100 साल प्रभुपाद जी के जन्म शताब्दी के 1996 में 108 देशों के लोग अपने अपने देश का झंडा, और अभी श्री प्रभुपाद क्या था, 150 साल इस्कान स्थापना के हो गए। तो जहां से प्रभुपाद जी चढ़े थे पानी के जहाज जलदूत में कलकत्ता से, वहां कितने देशों के लोग आए थे, वो गिनीज बुक में आया है कि इतने देशों के लोग आके और प्रभुपाद जी को श्रद्धांजलि, इस्कान की स्थापना, वो तो गिनीज बुक में हमारे भी सारे देश के प्रतिष्ठित लोग वहां गए थे, प्रधानमंत्री का भी उसमें और राष्ट्रपति का भी संदेश था। तो कहने का अर्थ यह है कि गीता सर्वजनिक है, ये भगवान के भाव को समझना, भगवान के इस संदेश को समझने के लिए भी भगवान ने अपनी तरफ से, अपने ही लोक से कुछ महात्माओं को भेजा जिन्होंने इस कार्य को किया। ये कोई सामान्य अवैध व्यक्ति का कार्य नहीं है। 70 साल का व्यक्ति इस वृंदावन के अंदर से और पूरे विश्व में ऐसा स्थापना करे आध्यात्मिक आंदोलन की, ये कोई मानव के बस की बात नहीं है। और मान लीजिए कि 65-66 से लेकर और 77 तक 11 साल में 60 से ज्यादा पुस्तक लिखना, ये संभव ही नहीं है। ये मानवता की क्षमता से बहुत ऊपर की बात है। लोग अभी तक इसके ऊपर शोध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कार्य है अद्वितीय कार्य है इस विश्व के ऊपर, लेकिन शास्त्र के ऊपर प्रमाणित है। तो भगवान कहते हैं प्राहु, ये शास्त्र ने कहा है, ये ऋषियों ने कहा है, और कहा है ये कैसा है, वृक्ष बोला अव्यय, पहले क्या बोला अश्वत्थ बोला, फिर अव्यय बोला। अव्यय किसको बोलते हैं, आप तो सब व्यापार करते हो, व्यय किसको कहते हैं, व्यय खर्चे को। आपके पास अगर है 1,000 रुपया, अब तो 1,000 है नहीं, 2,000 है या 500 है, 1,000 तो मर गया बीच में अगर 2,000 है उसमें से 500 खर्च किया तो बाकी कितना बचा, 1,500। लेकिन आप 2,000 में से 2,000 खर्च करो फिर भी 2,000 बचे, उसको कहते हैं अव्यय। नाश कुछ नहीं होता है, ये जैसे है वैसे ही रहता है। अव्यय का मतलब अविनाशी, इसका मतलब ये संसार अविनाशी है, ये शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन है नित्य। जैसे पहले था ऐसे, जैसे ये सृष्टि ब्रह्मा जी के पहले गुजरे हुए दिन में थी वो अब है, और आने वाले दिन में भी वैसे ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये ऐसे की ऐसे सृष्टि होती है हमेशा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे हम रात को उठते हैं, सुबह रात को सो के सुबह उठते हैं तो दूसरे आदमी तो नहीं बनते हैं, वही बनते हैं, वही घर होता है, वही दुकान होता है, कि कुछ और बदल जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी सो के उठते हैं, वैसी सृष्टि होती है जैसे पहले होती है, जहां काम हमने छोड़ा होता है वहीं से शुरू होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का दिन और रात बहुत लंबा है, उसकी गणना करते करते हम थक जाएंगे, इतना बड़ा है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, और एक कल्प में 4 युग 1,000 बार इसलिए वैसे 71 बार चार युग जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, लेकिन फिर रात होती है इतनी बड़ी। वैसे सामान्य गीता में सहस्र युग पर्यंतम, सहस्र युग अहर, अहर का मतलब दिन, उसके बाद ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी रात है, तब प्रलय हो जाती है, सब सो जाते हैं, फिर जब ब्रह्मा जी उठते हैं फिर नई सृष्टि होती है। और नई क्या मतलब, जिसने जहां छोड़ा था वहीं से काम शुरू करता है, कुछ नया नहीं बनता है। तो अव्य का मतलब अविनाशी है, यह कैसा है संसार रूपी वृक्ष, अविनाशी है। क्यों अविनाशी है, क्यों भगवान से निकलता है, भगवान अविनाशी है तो उनसे निकलने वाली हर एक चीज अविनाशी। अब तीसरी लाइन में क्या कहते हैं, छंदांसि यस्य प्रणानी, छंद आपको आना चाहिए सबको भारतीय है। छंद किसको कहते हैं, वेद को, वेद के ऋचाओं को छंद कहते हैं। वैसे छंद संस्कृत में छंद मीटर को भी कहते हैं, जो 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 कविता होती है ना वो छंदों में होती है, गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, कनक मंजरी छंद है, ये सब छंद है। लेकिन वेदों की ऋचाओं को छंद कहते हैं, वेदों को छंद कहते हैं। तो वेदों की ऋचाओं को छंद कहते हैं, वो क्या है, बोला इस वृक्ष के छंदांसी यस्य, यस्य मतलब इस वृक्ष के, प्रणानी का मतलब क्या है, प्रणानी पत्ते, प्रण कहते हैं, प्रण कुटीर बनाई कहते हैं ना रामचंद्र जी के लिए, प्रण कुटीर बनाई मतलब घास फूस पत्तों की बनाई, तो प्रण का अर्थ क्या है, पत्ते। तो इस वृक्ष के पत्ते क्या हैं, संसार रूपी वृक्ष के पत्ते क्या हैं, वेद की ऋचाएं। अच्छा, कोई वृक्ष अगर आपको दिखे उसके अंदर कोई पत्ता नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, अच्छा लगता है, उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल नंगा खड़ा है। और ये पत्ते कैसे हैं, जैसे उसको किसी ने बहुत सुंदर कपड़े सजा दिया है, इसका मतलब अगर मानव समाज इस, अगर इस मानव समाज इस धरती के ऊपर अगर वेद के ऋचाओं का पालन न करे तो बगैर पत्तों के वृक्ष वृक्ष जैसा नंगा ही दिखेगा। इसका मतलब है कि यहां एक और भगवत गीता का अध्याय आगे, ये 15वां है, इसके बाद 16वां भी अगर पढ़ेंगे, उस 16वें अध्याय का नाम क्या है, 16वें अध्याय का नाम क्या है, देव असुर स्वभाव, देव असुर स्वभाव विभाग योग, देवता और असुरी स्वभाव का कैसे विभाजन किया जाए। तो इस संसार में उसी में एक श्लोक है, पहला ही, दूसरा श्लोक है, दिवाओ इमो सर्ग लोके देव असुर एवच, दो प्रकाश की सृष्टि होती है, एक देवताओं की एक असुरों की। अब कौन देवता है कौन असुर है कैसे पता लगे, पंडित जी कभी आपको देखा है, जब जब जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं देव योनि, कभी लिखते हैं असुर योनि, ये लिखते हैं उसमें। तो देव असुर अब पता कैसे लगे, आदमी कोई असुर यहां कोई सींग वाला नहीं होगा, और ऐसा नहीं कि उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली होंगी और दांत बाहर, ऐसा नहीं है। असुर और देवता में, देवताई पुरुष और असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति में निर्णय करने के लिए कसौटी क्या है, वो क्या नाप दंड है, जैसे सोने को देखने के लिए कसौटी होती है, तो वो क्या कसौटी है जिससे पता लगे कि ये देवताई गुणों से संपन्न है कि असुरी गुणों से संपन्न है। वो एकमात्र कसौटी है शास्त्र के नियमों के अनुसार चलने वाला देवता और अपने मन से चलने वाला असुर, शास्त्र का निर्णय है ये। ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जया, शास्त्रम की विधि का अतिक्रमण करके, उत्सर्जया का मतलब छोड़कर, यजन्ते काम कारतः, यजन्ते काम कारतः, अपनी इच्छा से करते हैं जो चाहिए वो, न सुखम आपनोति, उनको सुख नहीं मिलता है, न सिद्धिम न सफलता मिलती है, न परम गति मिलती है। तो जो शास्त्र के नियम से चलता है वो देवता, और जो शास्त्र के विरुद्ध चलता है वो असुर। अब आप बताइए कि दुनिया में असुर ज्यादा हैं कि देवता ही लोग ज्यादा हैं? ये है सच, ऐसे दिखते नहीं है असुर, लेकिन है बहुत ज्यादा। और असुर की परिभाषा और एक सस्ती सर बहुत आसान समझा दो, संसार में जो धन है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, धन को क्या बोलते हैं अपने वैदिक भारतीय भाषा में? लक्ष्मी। और पृथ्वी को, ये भी माता है, ये भूदेवी है, विष्णु पत्नी है दोनों, राइट? ये दोनों भगवान नारायण विष्णु की, लक्ष्मी को नारायण के साथ होना चाहिए और ये भूदेवी भी नारायण के साथ होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये दोनों किसके भोग के लिए हैं? भगवान के। अब सीता कौन है? लक्ष्मी है। और राम जी तो नारायण है, ठीक है। अब रावण ने किसको ले गया और किसको छोड़ गया? रावण कौन उठा गया? लक्ष्मी को ले गया ना, लक्ष्मी को ले गया और राम जी को वन में छोड़ गया। तो रावण को कहते हैं क्या है? राक्षस। अब जो लोग केवल लक्ष्मी को ही मालिक बनने के चक्कर में लगे हैं, नारायण का नाम नहीं लेते, वो सारे कौन से खाते में जाएंगे? असुर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने आप चले जाएंगे सीधे। परिभाषा बहुत बहुत सरल है। और एक तरफ रावण और दूसरी तरफ हनुमान है, वो क्या करता है? वो सीता का पता लगा के राम के पास लाके उनसे मिलाता है। और ये जो सीता को राम से मिलाए, ये हनुमान, जो सीता को राम से अलग करे वो रावण। ये है देवता और असुर में अंतर। ये बहुत सरल है। अब आप इसी तरह से ढूंढेंगे तो आपको रावण बहुत मिलेंगे, हनुमान बहुत कम मिलेंगे। लक्ष्मी राम की सेवा में नहीं। इसलिए कभी कभी तो हम पूछते हैं कि लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, लेकिन जाते काहे के लिए? पूछ लेना 99% लोगों से, पूछो क्यों जाते हैं, धर्म का काम करते क्यों हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, तीर्थ क्यों जाते हैं? सुख शांति के लिए। बहुत अच्छा भाई, आपकी सुख शांति का नापदंड क्या है? क्या होगा तो आप सुख शांति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएगा, सुख शांति हो जाएगी, आत्मा का दर्शन होगा तो सुख। महाराज ये तो आपके लिए है, हमारा सुख शांति है पैसा कहाँ है, धन कहाँ है? तो हम पूछते हैं भैया आप जाके भगवान के मंदिर में कहो कि हमको धन दे दो, तो वो आपकी ओर घूर के देखेगा कि क्या मांग रहा है? ये लक्ष्मी है मेरी पत्नी, ये मांगने आया है, ये मूर्ख है, पहले नंबर का गधा है, इसको इतना पता नहीं है मांग क्या रहा है। तो क्या उसको वो भगवान को अच्छा लगेगा ऐसा मांगना क्या? तुम क्या कहते थे, हमारे वेद ने हमको क्या सिखाया? मंदिर में जाओ तो हाथ जोड़ के कहो तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व, ये जाके कहो तो कहेगी आओ बच्चा आओ, तुम आओ, तुम्हारे को दूध पिलाती हूँ, तुमको मक्खन खाओ चीनी खाओ। अब हम तो वहां जाते हैं पति बनने के लिए, तो फिर डंडे नहीं खाएंगे तो और क्या? अब देख लो ना हमारा जो ये परिभाषा आपको असुर और देवता की जो बता रहे हैं, ये कोई सामान्य आपको देखेगा, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो देवी गुणों से संपन्न है। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ये संतुलन जब बिगड़ता है तो इसको ठीक करने के लिए भगवान को अवतार लेना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण में कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। ये महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये साक्षात भगवान का अवतार है कलयुग में। जिन्होंने इसका सुमरण शुरू कर दिया है उनके जीवन में देवताई गुण अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, अलग प्रयास नहीं करना है। समासते सुराह, उनके अंदर सारे देवताओं के गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अरे हमारी सब इंद्रियों के ऊपर भाई देवता तो उसके अधिपति है, आंख में सूर्य देवता है, कान में अश्विनी कुमार है, जीभा में अग्नि देवता है, ये सारे इंद्र देवता, हाथ का देवता है, ये सारे देवता तो हमारे इंद्रियों में बैठे हैं। जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो वो शांत रहते हैं, जब भक्ति करते हैं तो वो बल दे देते हैं हमारे, तो हमारे अंदर भगवान जैसे गुण आने लग जाएंगे। लेकिन मात्रा थोड़ी होगी, बात भगवान अनंत है। तो यहां लिखा के वेदों की ऋचाएं इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, और अंतिम लाइन में लिखा है यस्त वेद स वेदवित, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद को जानता है। कोई पूछे वेद कौन है, भगवान कहते हैं वेद मैं हूं, और वेद से किसको जानना चाहिए, भगवान कहते वेद से मुझे जानना चाहिए। ये इसी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में आएगा, वैदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाम, वेदों को देने वाला भी मैं, वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं, तो वेद मेरे लिए हैं, वो वेद को जानता है। अब दूसरे और तीसरे श्लोक को पढ़ लेते हैं, हम नहीं चाहते एक श्लोक में, बाद में ये दोबारा कोई भक्त पढ़ लेंगे। अधश्च ऊर्ध्वं प्रतिष्ठास्तस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, अब ये श्लोक क्या कह रहे हैं, इसमें मुख्य बात है गुण प्रवृद्धा। प्रवृद्ध कहते हैं जैसे पानी देते हैं वृक्ष को ना, तो ये तीन प्रकृति के गुण सतो रजो और तमो गुण से इसको जल दिया जाता है। ये कैसे संसार चलता है, बोला तीन गुणों के कारण चल रहा है, ये तीन गुणों के कारण चल रहा है। जो सतो गुण के लोग हैं वो अधश्च ऊर्ध्वम प्रतिस्तस्य शाखा, अब ये कुछ इसकी शाखाएं ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। जो सत्वगुण के लोग हैं वो ऊपर के लोगों में हैं, जो रजोगुण के लोग हैं वो इस धरती के ऊपर हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व इतिष्ठा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व सत्वगुण वाले ऊपर के लोग देवताओं के लोक में जाते हैं, रजोगुण वाले इस धरती के ऊपर रहते हैं। रजोगुण की पहचान क्या है, रजो रागात्मा, रागात्मक, रागात्मक का मतलब आसक्ति बहुत होती है रजोगुण में। और पहचान क्या है, लोभ, लोभ और आसक्ति रजोगुण की पहचान है। यह धरती लोभी और आसक्ति वाले लोगों से भरा पड़ा है, और तमोगुण वाले आलसी पहले नंबर के, आलसी और दूसरा मदान, मद कहते हैं पागलपन, अज्ञानता। कैसी पागलपन, तमोगुण की पहचान क्या है, पागलपन क्या है, अरे हमारा दादा था वो भी चला गया, उसका दादा भी चला गया, तो पिता भी चला जाएगा, ये आया ये भी चला जाएगा, सबको देख रहा है फिर भी समझ रहा है नहीं मुझे क्या है, मैं तो सोया हुआ हूं। अरे भाई जागो उठो, तुम कुछ तैयारी तो करो, तो ऐसा मुंह रखे उसको जानते हुए भी कुछ नहीं करता है, वो तमोगुण वाला है। और तमोगुण का प्रभाव सबके ऊपर है, लिखा है तमोगुण का प्रभाव सबके ऊपर है। कैसे, क्या तमोगुण का प्रभाव, ये अज्ञानता। कौन सी अज्ञानता, अपने आप को आत्मा तो कोई मानता नहीं है, सभी शरीर मान के घूम रहे हैं दुनिया में, ये तमोगुण का पहला प्रभाव सबके ऊपर है। और दूसरा निद्रा तमोगुण का, कौन ऐसा दुनिया में जो बगैर निद्रा के चल सकता है, तो सोना तमोगुण है, जितना समय सोते हैं उतना समय तमोगुण में होते हैं, इसलिए शास्त्र कहता है कुछ कम सोना चाहिए, ज्यादा सोना तमोगुण है। तो इसकी ऊपर की शाखाएं देवताएं की है, नीचे शाखाएं मानव लोक और पशु पक्षी हैं, और गुण प्रवर्धा, इसको तीनों गुणों के जल से सिंचन होता है। तो इसका मतलब सिंचन होता है का मतलब, फिर कुछ लोग ऊपर जाते हैं कुछ नीचे आते हैं। कोई लोग हमको कह रहे थे मानव बहुत धरती के ऊपर बढ़ रहे हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है, अरे तेरा बच्चा एक भी नहीं है, तेरे दादा के पांच पांच थे तब तो बढ़ा नहीं, अब तुम्हारा एक है बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है आकर, भाई इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है, कभी इसके ऊपर विचार किया है, इसलिए संख्या बढ़ रही है, कोई वापस मानव जैसा शरीर मिला है जिसमें भगवान के धाम जाना चाहिए कोई जा नहीं रहा है, और बेचारे नीचे जूनियर वाले प्रमोट हो गए इंसान बनने, तो यहां भीड़ होगी कि नहीं होगी? ये तो नेचुरल है ना भाई। भाई कोई एक पांचवें की कक्षा है, वो एग्जाम हुआ और 10 पास हुए, 40 फेल हुए, और लेकिन चौथे से जो पांचवें 50 के 50 पास हो गए, तो 90 हो गए कि नहीं हो गए? और दूसरे साल 10 पास हुए मुश्किल से, तो 90 से 80 और 40 50 दूसरे आए, तो कितने हो गए? तो यहां जो लास्ट लाइन लिखी है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। कर्मण वे अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को, कुत्ते बिल्ले गधे को नहीं है। वो तो अपनी जोनी में भोग जोनी है उसका नाम, बाकी सारी 84 लाखों में 80 लाख जोनिया तो है केवल भोग जोनी, जो उन्होंने पुण्य पाप किया है उसका फल भोगेंगे। केवल एक मानव जोनी है, वो भी भारतवर्ष में और कहीं नहीं। लेकिन भारतवर्ष की परिभाषा हमारे शास्त्र की ये है, धरती जो खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई है उसको भारत कहते हैं। जम्बू द्वीप में अगर आप, तो सब भारतवासी हैं, ब्राह्मणों से कभी कोई घर में पूजा पाठ कराते हैं तो ब्राह्मण संकल्प पढ़ता है, तब कहता है जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे, दो शब्द कहेगा। भारतवर्ष मतलब पूरी पृथ्वी, भारत खंड मतलब उसके अंदर जो जमुना गंगा के बीच का ये टुकड़ा है, इसको भारत खंड कहते हैं। अभी अगर हम आज से 70 साल पहले देखें तो कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग तो नहीं था ना? ये तो इतिहास है न, को नहीं तो अलग था, बर्मा अलग नहीं था, ये सब कुछ, ये महिमा, ये सब कुछ तो पहले भारतवर्ष था ही ना। और पांडवों के समय में कंधार, वहां से तो गंधारी आई थी, दुर्योधन की माता तो वहीं से आई थी, और शल्य मामा इराक की राजधानी से, शल्य की राजधानी थी, शल्य जो नकुल और सहदेव के मामा है वो इराक के राजा थे, ये पूरा मिडिल ईस्ट उनकी राजधानी थी, और भगदत्त जो है वो चाइना का राजा था। तो ये सारा भारतवर्ष तो उस वक्त कहलाता ही था, आज भी पूरे विश्व में भारत के अवशेष मिलते हैं, कहीं भी जाओ तो नाम वैसे ही मिलेंगे जो पूरे भारतीय संस्कृति के हैं। तो भारतवर्ष केवल कर्म योनि है और कहीं कर्म नहीं है, और ये कर्मों का बंधन से सारी संसार फंसा हुआ है। अब एक दो श्लोक और पढ़ लेते हैं कथा को पूरी करने के लिए, और दो श्लोक इसलिए पढ़ते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए, न रूपम अस्य ततो उपलभ्यते, नान्तो न चादर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमैनं स्विरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततपदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। अब अर्जुन ने इतना सारा सुना ना, ऊपर नीचे पानी और फिर विषय प्रवाला, विषय मतलब इंद्रियों के विषय, जो जो पेड़ के अंदर नए नए कपोल खुलते हैं ना, अच्छे लगता है, जो आगे आगे क्या कहते हैं उसको, कपोल बड़े कोपल अच्छे लगते हैं, वो विषय है देखने का, दृश्य सुनने का, और उसके अंदर भोग करना चाहती हैं इंद्रियां। अर्जुन फंस गया, तो भगवान ने कहा न रूपमस्य ततो, इस दुनिया में ये वृक्ष देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर आपको देखना है नदी के किनारे देख लो, तो नदी के अंदर जो छाया दिखेगी उल्टी, उसमें दिखेगा पेड़ उल्टा है, पेड़ उल्टा, नदी के किनारे कोई पेड़ होगा तो उल्टा दिखेगा। उससे भाव ये है कि ये संसार असली आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब है इसलिए वहां जो है वो सब यहां है, लेकिन यहां सब बिगड़ी रूप में, विकृत रूप में, वहां जो है वो शुद्ध है और यहां विकृत है। एक भक्त ड्रामा करके दिखाते हैं, कोई आदमी बड़ा आम का सुंदर पेड़ नदी के किनारे था, आम ऊपर लगा हुआ था और दिख रहा था पानी में, उन्होंने समझा पानी में, वो पानी में कूद पड़ा आम को पकड़ने के लिए, वो तो डूबने लगा, किसी ने निकाला बोला क्या कर रहे हो, बोला आम पकड़ रहा हूं, फिर कूदा, उसने कहा आम नीचे नहीं है, वो आम उधर है, तुम कहां ढूंढ रहे हो, परछाई है ये आम की। तो ये दुनिया है आध्यात्मिक जगत की परछाई, यहां असली चीज है नहीं। दूसरा नाम इस दुनिया का क्या बताया है, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा गर्मी की मौसम में जैसे वो रेगिस्तान के अंदर हिरण को पानी दिखता है, पानी होता नहीं है। और दूसरा प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देता है, ये संसार कैसा है, बोला पुराने जमाने में लोग गधे घोड़े के ऊपर सवारी करते थे ना, गधे को भगाना होता था, अपना गधा है मारना तो ठीक नहीं है, तो क्या करते थे, एक लकड़ी के ऊपर आगे गाजर बांध देते थे गधे के आंखों के सामने 6 इंच उसके आगे, तो गधा समझता अभी खाऊंगा, बहुत ऐसे करते भागता था और बहुत तेज भागता था, गजर सामने पड़ा होता अभी खाऊंगा। वो जब घर पहुंचता था तो उतर के पहले गाजर खाता था और 2 सोटी मार के गधे को भगाता था। तो हमारे का हमारा भी हाल ये है, अभी बस ये बंगला बन गया, अब घर आ गया, अब दुकान हो गया, बच्चे की शादी हो गई, वो गजर उतना ही दूर रहेगा और मृत्यु का डंडा लगेगा और गजर कोई और खाएगा और हम तो ऐसे ही चले जाए, और तो कोई और ही खा जाता है, हमारे को तो ऐसे ही चलाया जाता है। तो ये इस ऐसा वृक्ष यहां दिखेगा नहीं, भगवान कहते हैं इसका ना अंत है, कहां से शुरू होता है कहां अंत होता है कोई पता नहीं है, क्या आधार है ये भी देखना मुश्किल है। बोला फिर अश्वत्थम अयलम सुईरूढ़ मूलम, और इसकी जड़ें बहुत सुईरूढ़ बहुत तकड़ी हैं, तो क्या करूं। बोला ये टाइम मत गवाओ कि कैसे आया कहां से आया, तो क्या करूं। बोला असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा, दृढ़ संकल्प करके अपने आप को यहां से अलग करो, इस वृक्ष के चक्कर से निकल आओ, नहीं तो तुम चलते चलते मर जाओगे ऊपर निकल। बोला कहां जाऊं, तो भगवान कहते तत्पदम, उस स्थान के ऊपर जाओ तत्पदम। बोला कौन सा पद है, तत्पदम यत प्रमार्गितव्यम, जहां जान उसकी खोज करो, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है, यहां तो ऊपर नीचे आना पड़ेगा, स्वर्ग में जाओगे तो भी वापस आना पड़ेगा, लेकिन उस जगह जाओ जहां से यस्मिन गत्वा निवर्तन्ते भूय, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। तमेव चाद्यम पुरुष, उधर जाके पुरुष को ढूंढो जो आदि पुरुष है, जो ये सृष्टि को सारी को चलाने वाला है, उस आदि पुरुष को जाके ढूंढो, पुरुषम उस पुरुष को जाके ढूंढो, बस ये तुम काम करो। यहां से पहले तो यहां से रसा खोलो और फिर भगवान के साथ जाके हाथ मिलाओ। और इसके बाद का श्लोक है ये, अगली बार करना, बहुत अच्छा श्लोक, सबसे अच्छा श्लोक ये, बहुत सुंदर है, पढ़ लो आप, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना कि नहीं। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वैर्व मुक्ता सुख दुख संगै, गच्छन्ति अमूढाः पदमव्ययंता। ये है साधन इस वृक्ष को तोड़ने का, इस वृक्ष से अब ये वृक्ष नहीं टूटेगा, लेकिन हमको इससे अपनी जान छुड़ाने का। एक खोज मत करो कि कैसे दुनिया बनी कैसे चलेगी, इसमें टाइम खराब मत करो, यहां से जान कब छुड़ानी है। कोई वृक्ष के नीचे आदमी बैठा था और ऊपर से सांप गिरा उसकी गोद में, अब वो आपको क्या करना चाहिए, वो सांप को ऐसे पकड़ के पूछना चाहिए भैया कहां से आए हो कहां जाओगे, ऐसे करेगा या क्या करना चाहिए, एकदम फेंक के जान छुड़ाओ ना। तो ये संसार में हम फंसे हुए हैं, अब यहां से जान छुड़ाने की सोचो, दृढ़ संकल्प कर लो और असंगता का क्या करना चाहिए। तो निर्माण मोहा, पहले तो अभिमान को छोड़ो। बोला अभिमान क्यों है, बोलो मोह के कारण है, और मोह और अभिमान ने हमको क्या किया है, अब निर्माण मोह जित संग दोषा, ये दोष जो संग का दोष है इसके ऊपर विजय प्राप्त करो। बोला संग कौन सा है, ये संसार में हमने कौन किसको संग बनाया है मोह के कारण। नाराज मत होना आप सब, बड़ा अच्छी बात सच्ची बात कह रहे हैं। अब जो प्रेम से कह रहे हैं ना आप, हमारे जो कहे हमारी सब कुछ आप हो, जिस दिन शरीर से आत्मा निकली ना, रोएंगे बाद में, सोना पहले याद आएगा, रोना बाद में याद आएगा, सब उतारेंगे। मालूम है ना, सबने देखा हुआ है कि नहीं है, रोना बाद में आता है, सोना पहले याद आता है। ये सब बाकी संग जो है ये तब तक है जब तक अंदर में आत्मा है, नहीं उसके बाद कोई किसी से कोई किसी से कुछ लेने देने वाला नहीं। तो ये सारे संग जो है ना, इनमें जो दोष है उनसे अपने आप को मुक्त कैसे करें, अध्यात्म नित्या नित्य आध्यात्मिकता का मार्ग को अपनाओ। भगवद गीता भागवत जैसे शास्त्रों के ऊपर आज जैसे बैठे हो ऐसे बैठ के डिस्कशन करना चाहिए और भगवान के भक्तों के संग में, तो हमारे को पता लगेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये सब हमको तब समझ में आएगा, तब हम सही मार्ग पे चल पाएंगे। अब 7 बजने वाले हैं, यहाँ कथा को विराम देते हैं। आगे से इस 15वें अध्याय के फिर इन्हीं श्लोकों के तात्पर्य को आप लोग पढ़ना, और ये 15वां अध्याय मेरे ख्याल में कार्तिक तक, कार्तिक में भी 15वें अध्याय को पढ़ते रहो तो अच्छा। ये 20 श्लोक हैं, पढ़ते रहो, बड़े अच्छे श्लोक हैं, और याद भी कर लो कार्तिक के महीने में, अच्छा रहेगा। संडे तो 4 ही आएंगे कार्तिक में ना, आप ये अध्याय पूरा करो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे।